संसार भर से मिसी सेवकाइयों ने मिलकर ये अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया है। इन शिक्षाओं का उद्देश्य सभी देशों के कलीसिया की सहायता की जाए, ताकि मसीही अपने विश्वास को समझें और यीशु मसीह के सेवक बन सके। शिक्षा का नाम है व्यक्तिगत सुसमाचार। शिक्षक हैं रेक कंफर्ट।
I'm Ray Comfort, and today we're going to look at true and false conversion.
मेरा नाम रे कंफर्ट है और आज हम देखने जा रहे हैं सच्चा और झूठा मन परिवर्तन।
Turn in your Bibles if you want to Romans 7 verse 4.
मेरे साथ खोलिए रोमियो के पत्री 7 अध्याय उसकी चौथी पंक्ति को।
While you're turning there, let me lay a foundation for this teaching.
जब आप इसे निकाल रहे हैं तो मैं इस शिक्षा की बुनियाद डालता हूं।
This teaching follows hard on the heels of another teaching.
ये शिक्षा किसी और शिक्षा के आधार पर है।
Called Hell's Best Kept Secret.
जिसका नाम है नरक का सबसे गूढ़ रहस्य।
In which we looked at the fact.
जिसमें हमने ये सच्चाई को देखा था।
That modern evangelism creates.
कि जो आधुनिक सुसमाचार.
About 80 what we call backsliders.
80% पीछे गिरने वाले लोगों को बना देता है।
With every 100 decisions for Jesus.
हर 100 निर्णय जो यीशु के लिए जाते उसमें से।
The average fall away rate.
औसतन जो पीछे गिरने वालों की जो गिनती है संख्या है।
In modern evangelism is between 80% and 90%.
जो आधुनिक सुसमाचार से होती है वो है 80% और 90%
के बीच। Now many of today's converts don't fall away.
इनमें से बहुत से विश्वासी पीछे नहीं जाते हैं।
They remain within the church.
वो कलीसिया के अंदर ही रहते हैं।
But they lack the things that accompany salvation.
परंतु उनको वो चीजों की कमी होती है जिससे उनका उद्धार हो या परिवर्तन हो।
And therefore there is some question.
इसलिए बहुत सारे सवाल उठते हैं।
Regarding the validity of their salvation.
कि उनकी जो उद्धार या मुक्ति सही है।
This tragedy has occurred.
ये जो दुर्घटना इस कारण घट रही है।
Because of the fact that modern evangelism.
क्योंकि जो आधुनिक सुसमाचार है
has failed to follow the biblical example
बाइबल की उदाहरण का अनुसरण करने में असफल हो गया है।
of law to the proud
घमंडियों के लिए कानून देता है जो
and grace to the humble
जो और अनुग्रह जो विनम्र
चार्ल्स
फिनी कहते हैं
said evermore the law must prepare the way for the gospel
और अधिक यह है कि कानून सुसमाचार के लिए मार्ग तैयार करे।
To overlook this in instructing souls
और इस बात को नजरअंदाज करने से
is almost certain to result in false hope.
ये लगभग गलत उम्मीद को जगाना है और गलत आशा
The introduction of a false standard of Christian experience
और मसीही अनुभव का गलत पद्धति तैयार करता है।
And to fill the church with false converts
और इससे हम अपनी कलीसिया को गलत विश्वासियों से भर लेंगे।
And then he said, time will make this plain.
कुछ लोग कहते हैं समा बीतने से सब ठीक हो जाएगा।
Now in the teaching,
देखते हैं शिक्षा के अंदर,
in our book,
हमारी पुस्तक के अंदर जो है,
which is called Hell's Best Kept Secret,
जिसका नाम है कि नरक का सबसे गूढ़ रहस्य,
there's a story of a speedster,
एक व्यक्ति की कहानी है,
a young man who sped through a town.
एक नौजवान व्यक्ति जो एक नगर में से तेज गाड़ी चलाता है
120 miles an hour.
120 की रफ्तार की तेजी से।
Now the town was backward.
ये जो नगर था बहुत ही पिछड़ा हुआ था।
They had no law against speeding.
उन वहां पर तेज चलाने के खिलाफ में कोई कानून नहीं था।
So they passed a law.
तो उन्होंने एक कानून को लागू करा।
Stating that 60 miles an hour was a maximum speed.
कि सब ज्यादा से ज्यादा 60 मील उल्लंघन करने वाले को जेल में डाल दिया जाएगा और जुर्माना भरना पड़ेगा। और ये जो व्यक्ति दूसरी बार वहां से तेजी से चला के लेके गया गाड़ी
was arrested this time
और इस समय उसको पकड़ा गया
गिरफ्तार हो गया
क्योंकि उसने वहां के कानून की उल्लंघना करी थी।
He couldn't pay the massive fine.
वो वहां का जुर्माना भर नहीं सका,
so he into prison.
इसलिए उसे जेल में डाल दिया गया।
Then his father, who was the judge,
तब उसका पिता जो वहां का जज था,
didn't pay the fine for him,
उसके लिए उसने जुर्माना भरा,
leaving him free to go.
उसे छोड़ दिया खुला.
So what is that son's attitude going to be to his father?
और अब ये बेटे का अपने पिता के प्रति क्या रवैया है?
What is his attitude going to be to the law?
और कानून के प्रति इसका रवैया क्या होगा?
Well, he's completely dead to that law.
वो उस कानून के लिए बिल्कुल मरा हुआ है.
It has no hold upon him.
उसके ऊपर कोई कानून का कोई ताकत नहीं है.
Because his father satisfied the law.
क्योंकि उसके पिता ने कानून की सारी हदों को पूरा कर दिया है.
By paying the fine for him.
उसके लिए हर्जाना भरने के द्वारा.
So now he lives to the will of his father.
और अब वो अपने पिता की मर्जी के अनुसार रहता है.
He wants to do his father's will.
वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता
है. Because he's so filled with gratitude.
क्योंकि उसका दिल धन्यवाद से भरा हुआ है.
For his father's sacrifice.
उसके पिता के कुर्बानी के कारण.
Now, with that thought in mind, let's look at Romans 7 verse 4.
और इन बातों को ध्यान में रखते हुए देखते हैं रोमियों की पत्री 7:4.
And see the attitude of the Christian to the law.
और देखते हैं मसीहों का रवैया कानून के प्रति क्या होता है.
Wherefore, my brethren,
so hey, mere bhaiyo,
you also have become dead to the law.
Tum bhi masih ki deh ke dwara vyavastha ke liye mare hue
by the body of Christ. So here's the attitude of the Christian to the law.
Aur dekhte hain masihon ka jo ravaiya vyavastha ke prati mare hue hain unke liye.
That you should be married to another.
Ki wo dusre ko ho jaye.
Even who is raised from the dead.
जो मरे हुओं से जी उठा,
that we should bring forth fruit unto God.
ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं.
So our attitude to the law is one of total lack of condemnation.
और हमारा जो रवैया व्यवस्था के प्रति होना चाहिए कि बिल्कुल कोई भी दोष नहीं.
We are dead to the law.
हम व्यवस्था के लिए मर गए हैं.
By the body of Christ.
मसीह के देह के कारण.
There's the payment of the Father.
क्योंकि पिता ने वो भुगतान कर
दिया. Now we live to the honor of the Father.
और अब हम पिता की मर्जी से रहते हैं.
Motivated by love and gratitude.
और उसके प्रेम और शुक्रगुजारी के कारण.
In the light of such a wonderful sacrifice.
इतने अद्भुत बलिदान के कारण से.
That we should bring forth fruit unto God.
ताकि हम परमेश्वर के लिए फल ला सकें.
Now, if we are rooted and grounded in Him,
और अब हम उसमें जड़ पकड़े हुए और मजबूत बनते हैं.
It should be evident.
ये दिखाई देने चाहिए ये बात.
Jesus said, "I'm the vine; you are the branches."
यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो.
He that abides in me, the same brings forth much fruit.
जो मुझ में बना रहता है वो अधिक फल लेकर आता है.
So what does the Bible mean by fruit?
और इसलिए जब बाइबल कहती है फल तो इसका अर्थ क्या निकलता है?
Well, one, fruit of repentance.
और पहला जो है और पश्चाताप का फल.
Matthew 3 verse 8.
मत्ती 3:8.
We won't turn to it.
उसको निकालेंगे नहीं हम लोग.
See, Zacchaeus had more than tears.
जकी के जीवन में आंसुओं से बढ़कर कुछ था.
He had fruit of repentance.
उसके जीवन में पश्चाताप के फल था.
He showed God he was sorry by his works.
उसने अपने कामों के द्वारा दिखाया कि वो अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करता है, शर्मिंदा है.
The second fruit.
ये है दूसरा फल.
The fruit of good works.
भले कामों के का फल.
We won't turn to it. Colossians 1:10.
हम निकालेंगे नहीं, परंतु कुलुसियों की पत्री 1:10 में लिखा है.
If you and I are Christians.
अगर मैं और आप मसीह हैं तो.
We should be letting our light shine.
हमें अपने रोशनी को प्रकाश को जाहिर करना है.
Jesus said, "So let your light shine before men."
यीशु कहते हैं तुम्हारी जो ज्योति है मनुष्यों के सामने चमकनी पाए.
That they may see your good works.
ताकि वो आपके भले कामों को देखें.
And glorify your Father which is in heaven.
आपके पिता की महिमा करें जो स्वर्ग में है.
Three, the fruit of thanksgiving.
तीसरी बात है धन्यवाद के फल.
Hebrews 13 verse 15.
इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसकी 14 आयत.
For we are saved, we should be filled with thanksgiving for Calvary's cross.
क्योंकि हम बचाए गए हैं क्रूस की कुर्बानी के कारण उस सलीब के कारण हमें धन्यवाद से भरे रहना चाहिए.
For the fruit of the spirit.
यह आत्मा के फल भी हैं. चौथी बात.
Galatians 5:22.
गलातियों की पत्री 5:22.
As Christians, we should have love.
मसीह होने के नाते हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए.
Goodness.
आनंद.
Gentleness,
धीरज,
faith,
विश्वास,
meekness,
नम्रता,
patience,
kirpa,
and temperance,
or sayam.
And fifth, or number five, the fruit of righteousness.
Dharmikta ke phal hone chahiye.
Philippians 1 verse 11.
Philippians ki patri ek day uski 11 ayat.
Scripture tells us every tree that brings not forth good fruit.
वचन कहता है कि जो वृक्ष अच्छा फल नहीं लेकर आता है
will be cut down,
उसे काट दिया जाएगा
and cast into the fire.
और उसे आग में झोंक दिया जाएगा.
Therefore,
इसलिए
as evangelists and those seeking the salvation of sinners,
और हम जो सुसमाचार प्रचारक हैं, जो उद्धार को ढूंढ रहे वो लोग सब,
we should be doing everything we can,
हमें सब कुछ करना है जितना हम कर सकें.
Not just to get decisions,
हमें सिर्फ निर्णयों को नहीं इकट्ठा करना,
not to get church members,
और हमें कलीसिया के सदस्य ही सिर्फ नहीं बनाना,
but to produce,
हमें ऐसे लोगों को उत्पन्न करना है,
by the grace of God,
परमेश्वर के अनुग्रह के कारण,
fruit bearing Christians,
फल पैदा करने वाले मसीह.
Now let's turn over to Mark 4 verse 3.
निकालते हैं मरकुस उसके 4 अध्याय उसकी तीसरी आयत को.
Mark 4 verse 3, and we're going to look
4 की 3.
At perhaps the most important parable Jesus gave.
यीशु मसीह के दृष्टांतों में से ये सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत है.
A parable that unlocks the mystery of the other parables.
ऐसा दृष्टांत जो दूसरे दृष्टांतों की व्याख्या खोलता है.
And we won't read it for the sake of time.
समय के कमी होने के कारण इसे हम पढ़ेंगे नहीं.
But we should be familiar with this parable.
परंतु हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए.
It's the parable of the sower.
ये है बीज बोने का दृष्टांत.
It's also recorded in Matthew 13.
ये मत्ती उसकी 13 में भी पाया जाता है.
And Luke verse 8.
और उसकी 8वीं आयत में.
Now in verse 13 of this wonderful parable.
और इस दृष्टांत में हम देखते हैं जो 13 आयत में.
The disciples had heard Jesus speak about a sower.
और देखते हैं कि यीशु मसीह बीज बोने वाले के बारे में बताते हैं.
And they said, really, we don't know what you're saying, Lord.
वो कहते हैं प्रभु हम नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं.
And Jesus said,
और यीशु मसीह कहते हैं,
know you not this parable?
क्या तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते हो?
How then will you understand all parables?
क्या तुम फिर कैसे दूसरे दृष्टांतों को समझोगे?
In other words, the parable of the sower is the key that unlocks the mystery of all the other parables.
दूसरे शब्दों में ये जो है बीज बोने वाला दृष्टांत बाकी सब दृष्टांतों की कुंजी है, उनको खोलता
है. If you and I understand,
अगर मैं और आप इसको समझते हैं,
that when the seed of the gospel is scattered,
कि यीशु मसीह के वचन का बीज जब बोया जाता है, फैला जाता है,
there is true and false conversion,
वहाँ पर सच्चे और झूठे विश्वासी पैदा होते
हैं. Which is what this parable is about.
यही ये दृष्टांत कहता है.
Then all the other parables Jesus gave,
तब यीशु मसीह ने जो बाकी सारे दृष्टांत दिए हैं,
will begin to open up to us.
हमें समझाने शुरू हो जाएंगे.
The foolish virgins,
मूर्ख जो कुंवारियां थी,
and the wise virgins,
और जो बुद्धिमान कुमारियां थी,
true and false conversion,
गलत और सही परिवर्तन,
the good fish and the bad fish,
अच्छी मछियां और बुरी मछियां,
true and false conversion,
सही और झूठा परिवर्तन,
the wheat and the tears,
गेहूं और जंगली बूटी,
true and false conversion,
झूठा और सच्चा परिवर्तन,
the man who built his house on rock and the man who built his house on sand,
व्यक्ति जो अपना घर चट्टान पर बनाता है और वो व्यक्ति जो अपना घर रेत पर बनाता है,
true and false conversion,
झूठा और सही परिवर्तन.
See, many people think the man who built his house on sand,
बहुत सारे लोग सोचते हैं जो व्यक्ति जिसने अपना घर रेत पर या भालू पर बनाया है,
is an unbeliever,
वो गैर विश्वासी है.
But Jesus said of him,
परंतु यीशु मसीह ने कहा,
whoever hears these sayings of mine,
जो कोई भी मेरे वचनों इन वचनों को सुनता
है, does not obey them,
और उनकी पालना नहीं करता है,
are likened to a foolish man,
वो एक मूर्ख व्यक्ति के समान है.
The world doesn't hear the sayings of Jesus.
जिस संसार यीशु के शब्दों को नहीं सुनता है.
I mean, all they know is just a minute amount of scripture.
वो तो वचनों के कुछ ही बातों के बारे में जानता है.
And even then, they lack understanding.
और फिर भी उसका समझ उनको नहीं
आती. There are multitudes in the church,
परंतु जो व्यक्ति कलीसिया के अंदर हैं,
who hear the sayings of Jesus,
और यीशु के शब्दों को वो सुनते हैं,
and do not keep them,
परंतु वो उनको रखते नहीं.
They call Jesus Lord,
और यीशु को प्रभु कहते हैं,
and do not the things that he tells them,
जो वो कहता है वो बातों को पूरा नहीं करते हैं वे.
So using the harmony of the gospels,
सुसमाचारों के समानांतर अध्ययन को इस्तेमाल करने के द्वारा,
We're going to look at six characteristics of a false convert.
और हम लोग झूठे विश्वासियों की छह श्रेणियों को देखने जाएंगे.
So here in my hand are six characteristics of a false conversion.
और यहाँ मेरे हाथ में गलत परिवर्तित लोगों के चरित्र हैं. नंबर एक है.
There are immediate results.
उनके तुरंत आने वाले परिणाम.
The reference is Mark 4 verse 5.
आयत है मरकुस 4 की 5.
The false convert doesn't weigh the issues.
झूठे परिवर्तित जो लोग हैं वे किसी मामले में सही नहीं आंकते.
Jesus said who goes to war and doesn't check out what the enemy's got.
और यीशु मसीह कहते हैं जो लड़ाई के लिए जाता है क्या वो देखता नहीं कि शत्रु के पास क्या है या कितनी उसके पास ताकत है.
Who builds a tower and doesn't check out his materials.
जो बुर्ज को बनाता है क्या अपने सारे सामान को चेक नहीं करता जांचता नहीं.
The false convert.
झूठा जो विश्वासी है.
Because the law hasn't been used to bring him light.
क्योंकि व्यवस्था उसके लिए रोशनी लेकर नहीं आई है.
Makes a commitment.
और ऐसा समर्पण करता है.
Lacking understanding.
जिसकी उसको समझ नहीं है.
Specifically.
विशेषकर.
As regards his sinful state before God.
और परमेश्वर के सामने वो एक पापमय स्थिति में रहता है.
He hears of the benefits.
वो उसके लाभों को तो समझता है.
And makes a decision.
और वैसे ही वो एक निर्णय ले लेता है.
Second sign of a false convert.
झूठे विश्वासियों की दूसरी निशानी ये है.
Is that he lacks moisture.
कि उसके अंदर नमी की कमी होती है.
Luke 8 verse 6.
लुका 8 की 6.
There is no thirsting after God.
परमेश्वर के लिए कोई प्यास नहीं है.
The third sign.
तीसरा
निशानी. There is no root.
उनमें कोई जड़ नहीं है.
Matthew 13 verse 6.
मत्ती 13 की 6.
There's no depth of character.
उनके चरित्र की कोई गहराई नहीं है.
For they receive the word with gladness.
क्योंकि वो खुशी से तो ग्रहण करते हैं वचनों को.
Mark 4 verse 16.
मरकुस 4 की 16.
Fifth, they receive the word with joy.
पांचवी बात है कि वो आनंद के साथ उनको ग्रहण भी कर लेते हैं.
Matthew 13 verse 20.
मत्ती 13 की 20.
There's no sorrow for sin.
पाप के लिए कोई उनको दुख नहीं है.
And number six, for a while they do believe.
और छठी उनकी निशानी है कि वो कुछ समय के लिए विश्वास भी करते हैं.
Luke 8 verse 13.
लुका 8 की 13 में लिखा है.
And this last one is what brings confusion to many.
और जो आखिरी वाला है बहुतों के लिए उलझन का कारण बन जाता है.
A false convert.
एक जो झूठा विश्वासी होता है.
Has a genuine.
उसका असली
false conversion experience.
झूठा अनुभव होता है.
So for a while he does believe.
वो कुछ समय के लिए विश्वास करता है.
Now we'll look at another picture.
अभी एक और तस्वीर को हम देखते हैं.
In my hand is a picture of two plants.
मेरे हाथ में दो पौधों की एक तस्वीर है.
On my right a large plant looks healthy.
मेरे दाएं में एक बहुत बड़ा सा एक पौधा है.
And on the left, a little plant looks a bit pathetic.
और उसके बाएं में एक छोटा पौधा है, बड़ा
कमजोर. This appears the healthy one, the big one.
ये जो बड़ा वाला है स्वास्थ्य
वाला दिखता है. And the little plant appears sick.
और ये तो बीमार दिखता है.
And let's look at another picture.
आइए एक और तस्वीर को देखते हैं.
The sun comes out suddenly.
और अचानक से सूर्य निकल आता है.
And the big plant begins to wither.
और ये जो बड़ा जो पौधा है सूखने लगता है.
But the little plant seems to be benefiting.
परंतु ये जो छोटा जो पौधा है इसको थोड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है.
Just very strange.
बहुत ही अजीब बात हो रही है.
And then it brings us to the third pick.
और ये हमें तीसरी तस्वीर की ओर लेकर आता
है. We begin to see what's happening under the soil.
और हम देखते हैं कि जमीन के अंदर क्या हो रहा है.
Under the soil, the big plant.
और ये जो जमीन के नीचे जो बड़े पौधे की जमीन
is sitting on a rock.
वहां पर चट्टान है.
And when the sun comes out,
जब ये सूर्य निकलता है
it can't send its roots in deep.
और उसकी जड़ें ज्यादा उसके अंदर नहीं
Because
जा पाती.
There's no depth of soil.
क्योंकि उसके नीचे जमीन में कोई ज्यादा गहराई
But
नहीं.
The little plant
परंतु ये जो छोटा पौधा है
is in good soil.
वो अच्छी भूमि में है.
It has a massive root.
उसका जो जड़ें हैं लंबी
हैं. And the sun doesn't kill it.
और ये सूर्य से मारता नहीं.
It causes it to prosper.
और उसे और ज्यादा
It sends its roots deep after moisture.
और नमी के कारण उसकी जड़ें और ज्यादा नीचे फैलती हैं.
Now let's go from the natural to the spiritual.
अब प्रकृतिक से हम लोग आत्मिक बात की तरफ जाते हैं.
Can you see that it was the sunlight that revealed what we couldn't see?
देखिए जो बात हम पहले नहीं देख पाते थे सूर्य ने उस बात को प्रकट कर दिया.
The sunlight revealed the soil condition of the plant.
सूर्य की रोशनी ने पौधों की जमीन की स्थिति को प्रकट कर दिया, दिखा दिया.
Spiritual,
देखिए आत्मिक बात में यह होता है.
The sunlight,
ये जो सूर्य की रोशनी है,
that which will reveal what we can't see,
जो बात हम देख नहीं सकते थे उसे प्रकट कर दिया.
The soil or heart condition,
जमीन या हृदय की स्थिति को दिखा
दिया. Believer,
ऐसे विश्वासी की जो सिर्फ घोषणा करने वाले विश्वासी.
One spiritual, sorry, tribulation.
और एक ही सताव के
Matthew 13:21.
ये मत्ती 13 की किस में लिखा है.
Two, temptation.
दूसरी बात है परीक्षा उनके जीवन में जा आती है.
Luke 8:13.
लूका 8:13.
And number three.
और तीसरी बात जो उनके जीवन में आती है सताव.
Mark 4:17.
मरकुस 4:17.
So tribulation.
इसलिए क्लेश.
Temptation,
परीक्षा,
persecution,
सताव,
will reveal,
ये बातें प्रकट करते हैं,
in the professing believer,
और ये घोषित विश्वासी के जीवन में,
what we cannot see,
जो हम देख नहीं सकते हैं अपनी कुदरती आंखों से.
Now, if you have a house plant,
अगर आपके घर में कोई पौधा है तो,
the worst thing you could do,
आप उसके साथ जो सबसे बेकार काम कर सकते हैं,
would be to hide that plant from the sun.
उससे आप सूर्य से छुपा लें तो ये सबसे बुरी बात है.
You said this is an expensive plant.
आप कहें कि ये बहुत ही कीमती पौधा है.
I don't want it to die.
मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए.
So you put in a closet.
आप उसे अलमारी के अंदर डाल
देते हैं. Protecting it from the sunlight will actually kill it.
और आप सूर्य से छुपाते हैं तो उसे आप मार देते हैं, सुखा देते
हैं. The best thing you can do for that plant,
उस पौधे के लिए सबसे अच्छी बात जो कर सकते
हैं,
उसे आप सूर्य की रोशनी में रखिए.
Make sure it's in good soil.
ताकि वो अच्छी जमीन में
रहे. Access to plenty of water.
और देखिए कि उसको काफी पानी मिल रहा है.
But you give it plenty of sunlight.
और उसे काफी सूर्य की रोशनी भी दीजिए.
You rotate the plant to get it sunlight.
सूर्य की रोशनी मिलने के लिए आप उसे घुमाते रहिएगा, अलग अलग जगह दिशा को उसकी मोड़िएगा.
In the same way,
उसी तरीके से,
the worst thing you can do with a new believer,
नए विश्वासी के साथ सबसे बुरी बात जो आप कर रहे हैं वो ये,
is to protect them from the sunlight,
उनको सूर्य की रोशनी से बचाना,
of persecution,
क्लेश से बचाना,
temptation,
परीक्षा से बचाना,
tribulation,
और सताव से बचाना.
If he's in good soil,
अगर वो अच्छी जमीन में है तो,
he has a good and honest heart,
अगर उसके हृदय में अच्छी जमीन है तो,
those three things,
ये तीनों बातें जो हैं,
will cause him to send his roots in deep,
उनको और ज्यादा उनकी जड़ों को मजबूत करेंगी.
If he's a false convert,
अगर वो झूठा विश्वासी है तो,
they'll cause him to wither and die,
वो उसे सुखा देगा और उसे मार देगा.
Now many years ago, when Russia was in communism,
और बहुत साल पहले जब रशिया आर्थिक वाद में
था,
मैंने एक कहानी को पढ़ा.
About a prayer meeting that was going on.
और वहां पर एक प्रार्थना सभा चल रही थी.
And suddenly the doors were thrust open.
अचानक से दरवाजा खुल गया.
And two Russian guards stood there.
और वहां पर दो रशियन
सैनिक. They pointed guns at the Christians.
उन्होंने मसीहियों पर अपनी बंदूकें तान ली.
They said, if you are not prepared to die for your faith, get out.
उन्होंने कहा अगर तुम अपने विश्वास के लिए मरने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर खड़े हो जाओ.
And half those professing Christians left.
और घोषणा करने वाले आधे विश्वासी जो थे वो भाग लिए.
Leaving a handful of believers.
और कुछ ही मुट्ठी भरी लोग वहां पर बैठे रह गए.
Then the guards put their weapons down.
तब संतरियों ने अपने हथियार नीचे कर लिए.
Got their Bibles out.
अपनी बाइबल निकाल ली.
And said, we're Christians.
उन्होंने कहा हम भी तो मसीही हैं.
We just want to sort out the sheep from the goats.
हम तो सिर्फ भेड़ों को बकरियों से अलग करना चाहते थे.
Before we would risk fellowship.
इससे पहले कि हम उस सभा में आकर मिलते.
Now a Russian guard clean out would do the church good.
देखो जो रशियन संतरी लोगों ने करा वो ऐसा ही अगर कलीसिया करे तो.
It would rid the church of murmurers and complainers.
उससे कलीसिया से नुक्ताचीनी करने वाले आलोचना करने वाले निकल जाएं. जो ऐसे बखेरों को निकाल
actually swallows them up in a ground the old testament.
पुराने नियम में ऐसे लोगों को परमेश्वर निगल लेता था जमीन से.
But secondly and more importantly,
दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण
बात है, Russian guard clean out would do,
जो रशियन संतरी लोगों ने करा कि वो सफाई करती
थी, would show the false convert the error of his ways.
और इस तरीके से जो गलत झूठे मसीह थे वो जाहिर हो गए, प्रकट हो गए.
Imagine the tragedy.
आप देखिए कल्पना कीजिए ऐसी
of leading someone to the Lord,
अगर कोई मसीह की अगुवाई कर रहा है, किसी को मसीह में ला रहा है,
there's no repentance,
बिना पश्चाताप करे,
The law wasn't used to bring a knowledge of sin.
व्यवस्था पाप के ज्ञान को नहीं लेकर आ रही थी.
She had a drug problem and a bad marriage.
उसकी तो शादी में समस्या थी और उसको
नशे की. You told her that Jesus would help her out.
हमने कहा यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा, उसे निकाल देगा आपको इसमें.
So there's no knowledge of sin.
और इसलिए उनको पाप का कोई ज्ञान दिया नहीं गया.
It's just an experimental attitude.
और ये तो सिर्फ एक अनुभव करने वाला, तजुर्बा करने वाला है, रवैया है.
Now this concerns you.
और इससे आपको परेशानी होनी चाहिए.
This person won't get into fellowship.
और ये व्यक्ति कभी संगति में नहीं आएगा.
Unless you bring them to church.
जब तक वो आप उनको चर्च में या कलीसिया में नहीं लेकर आते.
They don't read the Bible.
वो बाइबल भी नहीं पढ़ेंगे.
Unless you read it with them.
जब तक आप उनके साथ नहीं पढ़ेंगे तो.
So you see your ministry.
तो आप एक ऐसी सेवकाई को देखते हैं.
It's one of propping that person up.
जो उस व्यक्ति को ऐसे आगे बढ़ा रही है.
And you prop him up right till judgment day.
आप उसे खड़ा कर रहे हैं न्याय के दिन तक.
When the light of an omniscient God.
और परमेश्वर की उस रोशनी को उस
shines upon the heart.
जो हृदय पर पड़ती है.
And reveals the state of hypocrisy they're living in.
और जिस प्रकार के पखंडी जीवन को बीतते हैं उसे प्रकट कर देती
है.
और वो ऐसे खड़ा रहेगा जब तक न्याय नहीं होता अलग से.
You shield them from the sunlight.
आप उसे सूर्य की रोशनी से ढांप रहे हैं.
Wouldn't it be better to let him fall?
और ये अच्छा नहीं होगा कि उसे गिरने दें.
Rather than give him a false assurance.
उसे गलत आप आश्वासन देते
रहें.
वो खड़ा नहीं हो पाएंगे.
Never shield the plant from the sunlight.
कभी किसी पौधे को सूर्य की रोशनी से छुपाए ना.
For years I ran after so-called believers.
कई सालों तक मैं ये जो नामदारी विश्वासियों के पीछे घूमता रहा.
And yet Luke 9:62 says.
लुका 9 की 62 में लिखा हुआ है.
No man having put his hand to the plow.
कोई व्यक्ति अपना हाथ हल के ऊपर रखकर.
And looking back is fit for the kingdom.
पीछे मुड़कर अगर देखता है तो परमेश्वर के राज्य के लिए सही नहीं है.
The soil of the heart.
हृदय की जो जमीन है.
A good and honest heart.
एक सही और ईमानदार हृदय जो है.
Will determine whether or not that's going to be a genuine believer.
निर्णय लेगा कि क्या व्यक्ति वो सही और या गलत विश्वासी है.
Now turn to Colossians 4 verse 5 and let's read it together.
आइए मिलकर पढ़ते हैं कुलूशियां 4 की 5.
Colossians 4 verse 5.
कुलूशियां की पत्री 4 की 5 आयत.
In Colossians 4 verse 5,
Colossians 4
5, Bible says, walk in wisdom.
कि बुद्धि से बर्ताव करो.
Toward walk in wisdom toward them that are without.
उनके साथ जो बाहर वाले हैं उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो.
Redeeming the time.
समय को बहुमूल्य जानो.
Now I always interpreted that scripture.
मैं हमेशा इसकी व्याख्या इस प्रकार करता था.
As meaning those that are without the church.
सोचता था कि वो जो कलीसिया के बाहर हैं.
But a false convert.
परंतु ये जो गलत विश्वासी जो है.
Can be within the church.
वो तो कलीसिया के अंदर ही हो सकता है.
Sitting next to you in church.
वो कलीसिया में आपके बगल में बैठा होगा.
But he is without the body of Christ.
पर वो मसीह की देह से बाहर है.
The Bible says,
Bible
walk in wisdom toward them that are without.
कहती है कि बाहर वालों से बुद्धिमानी से बर्ताव करो.
Redeeming the time.
समय को बहुमूल्य जानो.
You see, a stony ground hera.
ये जो हृदय की कठोर भूमि होती है.
A false convert.
ये जो झूठा विश्वासी है.
Will steal your time from you.
वो आपसे आपके समय को चुरा लेगा.
They just want counsel.
वो तो हमेशा काउंसलिंग सलाह चाहते
हैं. They just want counsel.
हमेशा सलाह चाहते रहते हैं.
They are hearers.
वो सुनने वाले हैं बस.
But not doers.
परंतु करने वाले नहीं हैं.
They don't need counsel.
उनको कोई सलाह की जरूरत नहीं है.
They need repentance.
उनको पश्चाताप करने की जरूरत है.
You see,
अब देखिए.
The bigger plant doesn't need fertilizer.
ये जो बड़ा जो पौधा है इसको किसी खाद की जरूरत नहीं.
Fertilizer to the top leaf.
क्योंकि ये जो है खाद है ऊपर के पत्तों
की. It's not going to help it.
हम उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं?
Good soil.
अच्छी भूमि देकर.
And the professing convert doesn't need fertilizer of counsel.
ये जो मुंह बोले विश्वासी है इनको कोई खाद की जरूरत नहीं है.
It needs a good soil of a repentant heart.
उनको तो पश्चाताप करने वाले हृदय की जमीन चाहिए.
Years ago, I was on staff in a church in New Zealand.
New Zealand में कई साल पहले हमारे कलीसिया के स्टाफ में ऐसा हुआ.
With a very loving senior pastor.
एक बहुत अच्छा प्रेमी पासबन थे.
He's very slight built.
वो बहुत ही अच्छे तरीके.
Very thin man.
बहुत कमजोर व्यक्ति थे, बहुत दुबले.
Always joke about his thinness.
हमेशा उसके दुबलेपन का हम मजाक उड़ाते थे.
Didn't matter what he ate.
कुछ भी वो खा ले.
He didn't get fat.
मोटे नहीं होते थे.
Must have been his glorified body already, I think.
लोग कहते थे कि इसके पास पहले से ही रूपांतरित शरीर है.
But one night there was a knock on the door.
परंतु एक रात दरवाजे पर किसी ने खटखटाया.
It was 3 o'clock in the morning.
सुबह 3 बजे.
One of the sons went to the door, opened it up.
एक बेटे ने जाके दरवाजा खोला.
It was some morning council.
और कोई सुबह सुबह सलाह लेने के लिए आ गया.
3 a.m.
सुबह सुबह 3 बजे.
But the son went to his father and woke him up.
बेटा पिता के पास गया, उसे जाके उठाया.
Yes. He knew his father was a genuine shepherd.
उसे पता था कि उसके पिता एक अच्छे चरवाहे हैं.
He knew he wouldn't complain.
उसे पता था उसके पिता कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे.
He said to the young man, "Go and wait in the living room."
उसने कहा नौजवान को जाकर उस लिविंग रूम में इंतजार करो.
He woke his father up.
अपने पिता को उसने जाके उठाया.
When his father walked into the living room,
जब पिता उठकर उस लिविंग रूम में गए,
as he stepped through the door,
जैसे वो दरवाजे के अंदर गए,
a 14-inch machete blade came down upon his face.
उसके चेहरे पर 14-inch का ब्लेड चाकू से उसे मारा गया.
Severed his fingers.
उसके उंगलियां भी कट गई.
This man was trying to cut his head off.
ये व्यक्ति उसका गर्दन काटना चाह रहा था.
When his sons ran into the room to help him,
बेटा दौड़कर अपने पिता की सहायता करने गया.
They saw their father's blood around the walls of the living room.
उसने देखा कि दीवारों पर चारों तरफ खून लगा उसके पिता.
They almost killed the guy.
वो उस नौजवान को मार भी सकते थे.
They thought was trying to kill their father.
जो उसके पिता को मारना चाहता था.
Now the pastor lived.
अब ये पासबन तो जिंदा रहे.
After many operations.
उसके ऊपर ऑपरेशन किए गए.
But the next morning.
परंतु सुबह अगले ही दिन.
Another pastor called me.
एक और पासबन ने मुझे फोन किया.
He said, "Did you hear what happened last night?"
उसने कहा कि आपने सुना कल रात को क्या हुआ?
I said, "Yeah, heavy."
मैं सुना, हाँ, बहुत भयानक बात है.
He said, "Heavy. That guy went to my church."
कहता है कि वो नौजवान तो मेरी कलीसिया में आया था.
And then this pastor said to me.
तब ये पासबन ने मुझे कहा.
Fancy another Christian doing that.
दुख की बात है, एक और मसीह ऐसा काम कर रहा है.
I said, "Wait a minute."
मैंने कहा, रुकिए जरा.
The man is trying to cut the head off the pastor.
एक व्यक्ति पासबन की गर्दन को काटना चाह रहा है.
You could probably assume.
हम सोचेंगे.
That he lacks a little
उसके अंदर कमी है
in the area of love,
प्रेम में,
goodness,
दया में,
gentleness,
में,
self-control,
संयम में.
And since it's about time we took notice of scripture,
कि हमें ऐसी आयत लेनी है
which speaks of false brethren,
जो झूठे भाइयों के बारे में बताती है,
false apostles,
झूठे जो रसूल हैं, प्रेरित हैं,
False prophets,
झूठे नबी जो भविष्यवक्ता हैं,
False teachers,
झूठे शिक्षक,
and false conversion,
झूठा परिवर्तन जिनका है.
You see, a false convert,
देखिए झूठे जो परिवर्तित लोग हैं, झूठे विश्वासी जो हैं,
because he lacks fruit,
क्योंकि उनके अंदर फलों की कमी है,
will make up for it with branches and leaves.
वो अपने अंदर डालियों को और पत्तों को निकाल लेते हैं.
You'll find because he lacks the fruit of the spirit.
आप देखेंगे कि उनके अंदर आत्मा के फलों की कमी है.
He will try and impress you in other ways.
वो आपको दूसरे तरीकों से प्रभाव डालना चाहेगा आप पर.
He may call hallelujah louder
than
most.
दूसरों से बढ़कर ज्यादा ऊंचे स्वर में हालेलुया कहेगा.
Or amen
हर बात में आमीन कहता रहेगा.
He may wear a Christian t-shirt.
वो शायद मसीही टी-शर्ट पहनेगा.
There's nothing wrong with Christian t-shirts.
इसमें कोई गलत बात नहीं मसीही टी-शर्ट पहनने से.
Or he may wear a big cross around his neck.
बड़ी सी क्रूस पहनेगा.
Or he may carry a big Bible.
बड़ी सी बाइबल उठाएगा.
But what he wants to do is impress you.
क्या कुछ करना चाह रहा है, आप पर प्रभाव डालना चाह रहा है.
With branches and leaves.
अपने पत्तों से और डालियों से.
Because he lacks fruit.
क्योंकि उसके अंदर फलों की कमी है.
Now look at Matthew 7 verse 13.
मत्ती 7 की 13.
In Matthew 7 verse 15 through to 20.
मत्ती 7 की 15 से 20.
This is Jesus speaking.
यीशु कहते हैं.
He says, "Beware of false prophets."
कहा जाता है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो.
Who come to you in sheep's clothing.
जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं.
But inwardly they're ravenous wolves.
अंतर में फाड़ने वाले भेड़िये हैं.
In other words, they look good on the outside.
उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे.
You'll know them by their fruits.
उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे.
Do men gather grapes from thorn bushes?
क्या झाड़ियों में अंगूर?
Or figs from thistles?
या उटकंठारों से अंजीर तोड़ते हैं?
Even so, every good tree.
इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़
bears
अच्छा
good fruit.
लाता है.
But a bad tree bears
और
bad fruit.
पेड़ बुरा फल लाता है.
Now listen to verse 18.
अब 18 आयत को ध्यान से सुनिएगा.
A good tree cannot bear bad
अच्छा
fruit.
पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता.
Nor can a bad tree bear good fruit.
और ना नकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है.
You hear what Jesus
सुना
is saying?
यीशु क्या कह रहे हैं?
A fountain doesn't bring forth sweet water and bitter
water. चश्मा खारा और मीठा पानी एक साथ नहीं लेकर आता है.
He's saying you don't swap from false plant to genuine plant back and forth.
कहीं कभी आप अच्छा पौधा या बुरा पौधा बन जाते हैं, आप ऐसा होता नहीं है.
A bad tree can't bring forth good fruit.
बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता है.
Neither can a good tree bring forth bad fruit.
उसी तरीके से अच्छा पेड़ बुरा फल भी नहीं लेकर आ सकता.
If you've got a Christian,
अगर आप मसीही हैं तो.
He says he loves the Lord.
वो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ.
Just keeps beating up his wife.
और अपनी पत्नी को खूब पिटाई कर रहा है.
There's a little problem he's got.
उसके एक थोड़ी समस्या है.
He's got a big problem.
उसके पास बड़ी समस्या.
Because he doesn't bring forth bad fruit if he's a good plant.
क्योंकि अगर वो अच्छा पेड़ है तो बुरा फल नहीं वो लाएगा.
Every tree.
हर एक पेड़.
That does not bear good fruit.
अच्छा फल नहीं देता है.
Is cut down and thrown into the fire.
वो काट दिया जाता है और आग में झोंक दिया जाता है.
Therefore, by their fruits you will know them.
इसलिए आप उनके फलों से उन्हें पहचान लेंगे.
Turn over to Acts 20, verse 29.
मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 29 और 30 आयत को.
In Acts 20, verse 29 and 30,
प्रेरितों के काम
Paul is speaking.
20 अध्याय 29 और 30 आयत पौलुस कहते हैं.
For I know this,
मैं जानता हूं,
that after my departure,
मेरे जाने के बाद,
savage wolves will come in among you,
फाड़ने वाले भेड़िये तुम में आएंगे,
not sparing the flock,
जो झुंड को ना छोड़ेंगे,
also from among yourselves,
तुम्हारे ही बीच में से भी,
men will rise up,
ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे,
speaking perverse things,
जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे,
to draw away the disciples after themselves,
वो टेढ़ी-मेढ़ी बातें कहेंगे.
You see wolves,
देखिए भेड़िये,
wait at the back,
और पीछे इंतजार करते रहते हैं,
and pick off the weak sheep,
और कमजोर भेड़ों के पीछे चले जाते हैं.
That's why we need to mark those who cause division.
इसलिए हमें उनको निकालना है जो फूट को लेकर आते हैं.
To know each other by a fruit.
तुम उनके फलों से पहचान लोगे.
You see, the true convert will stand no matter how great the adversity.
देखिए जो अच्छे विश्वासी हैं, सही विश्वासी हैं, कितनी बुरी स्थिति आ जाए फिर भी खड़े रहेंगे.
Remember the picture?
आप तस्वीर को याद करते हैं?
No matter how great the sunlight.
आप देखिए कितनी भी तेज जो सूर्य की रोशनी
क्यों ना हो,
उसको वो मुरझाएगी नहीं.
You can drop a genuine convert.
आप किसी भी एक असली विश्वासी को
into a den of lions.
शेरों की मांद में फेंक दीजिए.
What will he do? Raise his fist to God?
क्या अपनी मुट्ठियां परमेश्वर की तरफ उठाएगा?
No, he'll drop to his knees.
और अब वो परमेश्वर की तरफ अपने
he'll send his roots in deep.
करेगा.
If you put a genuine convert at the Red Sea.
आप सही विश्वासियों को लाल समुद्र में डाल दे.
Pharaoh chasing him.
फिरौन उनका पीछा कर रहा है.
Is he gonna lift his fist to God?
क्या परमेश्वर की तरफ अपनी मुट्ठी उठाएगा?
No, he stands still and see the salvation of God.
या वो खड़ा रह के परमेश्वर के उद्धार को देखेगा?
Because he's on good soil.
क्योंकि वो अच्छी भूमि पर लगाया गया है.
You see, Jesus sent his lambs among wolves.
यीशु मसीह अपने मेमने भेड़ियों के बीच में भेजते हैं.
And the reference for that is Luke 10 verse 3.
इसके लिए आयत है लूका 10 की 3.
Why did he do that?
क्यों यीशु ऐसा करते हैं?
That is so contrary to the concept of modern evangelism.
और आज की जो सुसमाचार से ये बिल्कुल विरोधाभास बात है ये.
If modern evangelism gets lambs,
अगर आधुनिक सुसमाचार को ये मेमने मिल जाएं,
They needed to be protected and followed up.
Unka anusaran karna chahiye,
unko raksha karne ke liye.
Parantu Yeshu aise memnon ko bhedon ke beech mein, bhediyon ke beech mein bhej dete hain.
Why? Because the sunlight,
kyunki surya ki roshni,
of tribulation, temptation and persecution,
ye jo satav hai, pareshani hai, pariksha lekar aati hai,
will cause the genuine to grow,
ye jo sahi vishwasi ko uncha karegi,
and expose the false,
aur bure ko jhoothe ko prakat kar degi.
And that's what happened.
Waisa hi hota hai.
Judas Iscariot was never a Christian.
Aur Yuda Iskaroti kabhi bhi masih tha hi nahi.
Say, how do you know that?
Aap kehte hain bhi aapko kaise malum hai?
Because Jesus said one of you is a devil.
Kyunki Yeshu ne kaha tha tum mein se ek jin shaitan hai.
And there's a good clue.
Ye ek acha ek nishan hai.
So in closing,
aur samapt karte hue,
I would like you at some time,
main chahta hu ki aap kabhi kabhar,
to read Colossians 4,
aap Colossians ke patri 4 adhyay ko padhiye,
verses 7 to 14,
uske 7 aise 14 ayat tak aap padhiyega.
And as you read that portion of scripture,
jab aap vachan ke is bhag ko padhte hain,
notice how Jesus put, sorry, Paul put a seal of approval,
dekhte hain ki Paulus kis prakar ke wo manyata ki mohar ko lagata hai vishwasiyon ke upar.
In verse 9 of Colossians 4,
aur 4 ki 9 Colossians mein batate hain,
this is what he says in verse 9 of Colossians 4,
Colossians ki patri 4 ki 9 mein Paulus is prakar kehte hain,
Onesimus, a faithful and beloved brother,
vishwas yogya aur priya bhai,
who is one of you,
aap mein se ek,
they shall make known unto you all,
wo tumhi se hai,
all things that are done here,
wo yahan ki sari baatein batayenge aapko.
In verse 10,
wo 10th ayat mein bataya hai,
he says, Aristarchus, my fellow prisoner, salutes you,
Aristarchus jo mera saath qaidi hai.
Now there's no seal of approval on Aristarchus,
उस पर कोई भी मान्यता की मोहर नहीं है.
And Marcus,
और मरकुस,
sister's son to Barnabas,
बर्नबा का भाई,
touching whom you received commandments,
जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी,
if he comes to you,
कि यदि वे तुम्हारे पास आए,
receive him,
तो उसी अच्छी तरह व्यवहार करना.
In those days,
उन दिनों में,
your life could be online,
आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है.
If you trusted a so-called brother,
agar aapne naamdhari kisi bhai par vishwas kiya.
So further down in verse 14,
aur aage badhkar 14 ayat mein likha hai,
Paul says, Luke the beloved physician,
kehta hai priya vaid Luka,
and Demas greet you,
aur Demas tumhe namaskar karte
hai. There was no seal of approval on Demas,
ke Demas ke upar ek manyata ki mohar hai.
And as though Paul looked at Demas,
जैसे पौलुस देमास की ओर देखता है,
and thought, you lack fruit,
और तेरे अंदर फलों की कमी है.
I'm not going to say you're one of us,
मैं नहीं कहने वाला कि तुम में से एक हैं.
I'm not going to say if Demas comes to you, receive him,
मैं नहीं कहता कि जब देमास आए तो उसे आप स्वीकार कीजिए.
And in 2 Timothy chapter 4 verse 10 we see why,
और दूसरा तिमोथी 4 की 10 में बताता है कि क्यों नहीं उसने ऐसा करा.
Paul didn't put a seal of approval on this man,
इस व्यक्ति के ऊपर उसने अपनी मान्यता की मोहर नहीं लगाई.
And in 2 Timothy 4 verse 10 we see why,
और दूसरा तिमोथी 4 की 10 में हम पढ़ते हैं कि क्यों नहीं.
Demas has forsaken me,
क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है,
having loved this present world,
is sansar se priya.
Scripture says whoever is a friend of the world is an enemy of God,
Bible kehti hai ki jo sansar se prem rakhta hai wo parmeshwar ka dushman hai.
Demas loved the world,
Demas ne sansar se pyar kiya,
and the sunlight of temptation,
aur pariksha ki surya ki roshni,
eventually caused him to wither and die,
usne use murja diya aur wo sook kar mar gaya.
So in summary,
aur sankshep mein main kehta hu,
we mustn't run around getting decisions for Jesus,
hum yeshu masih ke liye nirnayon ko ikattha karne mein na lag jaye.
Decisions are very easy to get,
ye jo faisle ikatthe karne bade aasan hai.
When I was a new Christian, I lacked understanding,
jab main naya masih tha to mujhe samajh ki bahut kami thi.
I didn't understand true and false conversion,
mujhe sahi aur jhoothe parivartan ke bare mein gyan nahi tha.
I got more than 20 decisions from my friends,
main apne मित्रों में से 20 निर्णयों को इकट्ठा करा.
Personally, I was responsible,
मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका जिम्मेदार था,
20 false conversions,
उन 20 झूठे फैसलों निर्णयों का.
because I didn't understand.
क्योंकि मैं समझता नहीं था.
The principle
जो सिद्धांत है
of preaching law to the proud
और घमंडियों को व्यवस्था प्रचार करना
and grace to the humble
और नम्रों के लिए अनुग्रह प्रचार करना
of using the Ten Commandments
दस आज्ञाओं का इस्तेमाल करते हुए
as Jesus did
जैसे यीशु ने करी थी
to bring the knowledge of sin
पाप के बारे में ज्ञान लाने के लिए
It's only when a man understands he sinned against heaven
जब इंसान समझ जाता है कि उसने स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है
that he'll exercise repentance towards God
तब वो परमेश्वर के प्रति मन फिराता है पश्चाताप करता
है faith toward our Lord Jesus Christ
और यीशु के प्रति अपना विश्वास लेकर आता
then because he's on good soil
क्योंकि वो अच्छी भूमि और जमीन पर होता है
he's received the seed into a good and honest heart
और अपने ईमानदार हृदय में ऐसे बीज को ग्रहण करता है
he then puts his hand to the plow
तब वो अपना हाथ जब हल पर रखता है
and doesn't look back
तब वो वापस पीछे मुड़कर नहीं देखता
because he's fit for the kingdom
क्योंकि वो राज्य के लिए ठीक है साबित है
let's close in prayer
आइए प्रार्थना समाप्त करते हैं
Father, we pray for wisdom.
पिता हम ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं
we pray for the gift of discernment.
हम लोग परख की वरदान के लिए
we
दुआ
pray
करते हैं
that you would make us wise.
और हम दुआ करते हैं कि हमें और बुद्धिमान बना
to them that are without.
ताकि वो जो बाहर वाले हैं
redeeming the time.
समय को हम बचाते हुए बहुमूल्य जानते हुए
for the days are evil.
ताकि जो दिन जो बुरे हैं
Father, let each of us
पिता हम सबकी अगुवाई कर
and examine ourselves
कि हम अपने आप की परख करें जांच करें
and see if we're in the faith
क्या कि हम विश्वास में हैं या नहीं
is there fruit of righteousness
क्या हमारे अंदर धार्मिकता के फल हैं
is there fruit of praise
क्या स्तुति के फल हैं
is there fruit of thanksgiving
क्या धन्यवाद के हमारे अंदर फल पाए जाते हैं
is there the fruit of the spirit
क्या आत्मा के फल हमारे अंदर है या नहीं
may we have much fruit
ताकि हमारे अंदर बहुत आय से फल होने पाए खुदा
and bring glory to your name
ताकि आपके नाम को हम महिमा देकर
in Jesus name we pray
यीशु के नाम से हम दुआ को मानते हैं
amen
आमीन